আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদাম বাইনাল মা'ই ওয়াত-তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দ, ফা'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল্লাহ ওয়া মালায়েকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবী, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. آج کے ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے آداب زندگی. اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ آداب سکھائے ہیں, اور قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جس نے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک تمام چیزیں بیان کر دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کس طرح کرنا ہے, کس طرح اٹھنا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, یعنی پیدائش سے لے کر موت تک سب چیز اس کے اندر آ گئی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تک اس پر عمل کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ آداب کیا ہیں جو آداب زندگی ہمیں بتائے گئے ہیں, اور کیوں بتائے گئے ہیں. اس لیے کہ یہی چیز انسان اور جانور میں فرق کرتی ہے. جانوروں پر کوئی احکامات لاگو نہیں ہوتے, نہ ان کے اندر شادی بیاہ ہے, نہ ان کے اندر کوئی بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ ہے. جہاں چاہاں وہ مار کے کھا لیا, جہاں چاہاں لیت کر دی, جہاں چاہا جو چاہا کر لیا. کوئی قاعدے قوانین نہیں. قوانین ہیں انسانوں کے لیے, آداب احترام یہ ساری چیزیں جو ہیں انسانوں کے لیے. ہر چھوٹے پر لازم ہے کہ اپنے بڑے کا احترام کرے, ہر شاگرد پر لازم ہے کہ اپنے استاد کا احترام کرے, ہر مرید پر لازم ہے کہ اپنے پیر کا احترام کرے, ہر اولاد پر لازم ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرے, اور اسی طرح یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے تمام امت پر لازم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کرے. واجب ہے, لازم ہے, ضروری ہے, ورنہ ایمان کامل نہیں. ہماری کیفیت یہ ہے کہ ذرا سی بات ہو تو ہم چراغپا ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. مثلا اولاد کو ہی لے لیجئے, جس باپ نے خون پسینے کی کمائی سے تمہیں پروان چڑھایا, اس قابل بنایا کہ تم معاشرے کے ایک فرد بن سکو, اسی کے سامنے سینہ تان کے کھڑے, اسی کے حکم زولی کر رہے, اسی پر غصہ کر رہے. جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر اپنے خون سے تمہاری پرورش کی, اور ولادت کے بعد 2 سال اپنے دودھ سے پرورش کی, اس کے سامنے غصے میں کھڑے ہیں, اس کی حکم زولی کر رہے ہیں, اس کے سامنے چیخ رہے ہیں. قرآن نے کہا کہ چیخنا تو دور کی بات ہے, حکم زولی تو دور کی بات ہے. اُفِّم وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, یعنی اُف تک نہ کہو. والدین کچھ کہتے ہیں نا, اولاد غصے میں آ جاتی, دیکھو ہمیں یہ کہہ دیا, ہمیں یہ کہہ دیا. ایک چیز ہوتی ہے نا اف, کوئی بات بری لگے اف یہ کیوں ہو گیا. قرآن کہتا ہے اف بھی نہ کہو, افم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, لیکن جب ان سے بات کرو تو اچھے طریقے سے کرو, اور رب سے دعا کرو مولا انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا, مجھ پر رحم کیا, میری پرورش کی. کما رب یعنی صغیرہ, جس طرح کہ میں چھوٹا تھا, مولا تو بھی ان پر رحم فرما, والدین پر. تو جب تک اولاد والدین کا ادب نہیں کرے گی, कभी भी दुनिया में कामयाबी हासिल नहीं करेगी। कितनी दुआएं कर लो, कितने तावीज ले लो, कितने वजीफे पढ़ लो, अगर वालदैन नाराज हैं औलाद परेशानी रहे। और अगर मां बाप का दिल खुश हो गया, अल्लाह तबारक बताला ऐसी सूरत पैदा फरमा देगा कि सारी परेशानियां दूर हो जाए। उनकी दुआ का असर, और बाज मरतबा दिल से दुआ निकलती, एक होती ना जबान से दुआ, एक होती दिल से। जबान से कुछ नहीं कहते, दिल खुश हो गया, खालिक़े कायनात खुश हो गया। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि वालदैन का अदब और एहतराम, कभी उनकी हुक्म उजूली नहीं, कभी उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं। अगर वो कोई ऐसी बात करें जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो, खामोश हो जाओ, बहस मुबाहिसा ना करो, बुलंद आवाज से ना बोलो। यही अदब है, यही एहतराम है, यही कुरान और नबी पाक अलैहिस्सलाम अहादीस में हमें बता रहे हैं। हर शागिर्द पर लाजिम है उस्ताद का एहतराम करे। इंसान इल्म उस वक्त हासिल करता है जब तीन चीजों का अदब करे, तीन। अगर इन तीन चीजों का अदब नहीं करेगा, इल्म कभी भी उसके सीने में नहीं आएगा, जाहिल का जाहिल रहेगा। पहली चीज उस्ताद, जिससे वो इल्म हासिल कर रहा, उसका एहतराम इंसान पे लाजिम है, पहली चीज। दूसरी चीज वो किताब जिससे इल्म हासिल कर रहा, यानी उस्ताद कोई किताब पढ़ाएगा ना, वो किताब, उस किताब का एहतराम भी लाजिम है। तीसरी चीज वो इदारा, वो दारुलूम, वो मदरसा, वो खानका, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी, जहां भी वो इल्म हासिल कर रहा है उसका एहतराम भी लाजिम। इन तीन चीजों का एहतराम जो इंसान करेगा, सही मानों में इल्म उसी के सीने में आए। और यहां क्या कैफियत है, इल्ला माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी में आप देख ले, सबको मैं नहीं कह रहा, अक्सरियत उस्ताद के सामने रिवाल्वर लेकर खड़े हो जाते, गालियां देते, रिवाल्वर रख के, पेपर रख के वहीं नकल की जाती, उस्ताद को वॉशरूम में बंद कर देते। ये उस्ताद का अदब हो रहा है, जो किताब पढ़ रहे हैं उसी के वर्के फाड़ फाड़ के अपनी जेबों में भर के और फिर उसी से नकल करने के लिए जा रहे हैं, ये किताब का एहतराम हो रहा है। जिस इदारे में पढ़ रहे हैं उसी को नुकसान पहुंचा रहे, कैसे इल्म हासिल होगा, जाहिल पैदा होंगे। सिर्फ डिग्री मिलने से इल्म हासिल नहीं होता, इंसान की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये आलिम है या जाहिल, ये एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड, बात करने का अंदाज बताता है ये कौन है। एक है तालीम, एक है तरबियत, दोनों जरूरी हैं। बहुत से बड़े बड़े वेल एजुकेटेड फिरते इधर से उधर, लेकिन खाने पीने की तमीज नहीं, उठने बैठने की तमीज नहीं, गुफ्तगू की तमीज नहीं। तालीम है, तरबियत नहीं। तालीम के साथ तरबियत भी जरूरी है। हारून रशीद ने अपने बेटे मामून को पढ़ने के लिए भेजा, और यह खलीफा वक्त था, बगदाद में रहता था। खलीफा वक्त का मतलब आप ये समझेंगे जैसे आज के दौर में वजीर आजम, उसका खलीफा कहा जाता था। अब वजीर आजम का बेटा जो आज के दौर में अगर कहीं पढ़ रहा हो तो लोग कहेंगे वजीर आजम का बेटा है, इसको कौन मार सकता है, इसको कौन डांट सकता है, किसी कॉलेज में जाएगा, और आजकल तो जाएगा तो प्रोटोकॉल के साथ जाएगा। खैर बहरहाल उसको बिठाया पढ़ने के लिए। उस वक्त के एक जय्यद आलिम दीन थे, उनके मदरसे में तालीम हासिल कर रहा इल्म दीन। हारून रशीद अपनी सवारी पर वहां से गुजरा, जब मदरसे के आगे से गुजरा तो उसने देखा कि उसका बेटा लोटा लिए खड़ा है और उस्ताद मोहतरम वुजू कर रहे, वुजू मुकम्मल हो चुका था, सिर्फ पैर धो रहे थे, पैर आखिर में धो जाते ना, बस पैर धो रहे। इसने सवारी रुकवा दी, उतर कर गया और जाकर कहा उनका नाम लेकर कि मैंने इसको इस काम के लिए तो नहीं भेजा। अब उन्होंने सोचा होगा कि इसको शायद गुस्सा आया है कि मेरा बेटा खलीफे वक्त का बेटा शहजादा जो कहलाता है को वजू करा रहा है। उन्होंने गौर से देखा तो आप जानते हैं हारून रशीद ने क्या कहा। हारून रशीद ने कहा, हजरत इसको मैंने अदब सीखने के लिए भेजा था, आपने इसको अदब नहीं सिखाया कि ये लोटे से पानी डाल रहा है, आप खुद अपने हाथ से अपने पैर मल रहे हैं, इसको ये क्यों नहीं अदब सिखाया कि एक हाथ से ये पानी डालता दूसरे हाथ से आपके पैरों को मलता रहता ताकि आपको अपना हाथ भी लगाने की जरूरत ना पड़े। ये है उस्ताद कहते हैं, ये है अदब, तब इल्म आता है। ऐसे नहीं आता कि उस्ताद को उठा के वॉशरूम में बंद कर दो या गालियां दो या उसके सामने खड़े हो जाओ तो पढ़े लिखे जाहिल पैदा होते। तो इसलिए जो किताब पढ़ें उसका एहतराम, जिस इदारे में पढ़ें उस इदारे का एहतराम, जिस उस्ताद से पढ़ें उस उस्ताद का एहतराम। कभी भी गुजरे पता चल जाएगा हां इस इदारे से हमने इल्म हासिल किया। हमने दारुल नईमिया में दरसे निजामिया का कोर्स किया, आज भी जब मैं जाता हूं तो अपनी क्लास को जरूर देखता हूं जाकर कि यहां पहली मर्तबा मैं आकर बैठा था। उससे एक मोहब्बत होती है, एक याद वाबस्ता होती है, कितना अरसा गुजर जाए लेकिन वो याद कायम रहती है। तो इसलिए उस्ताद का एहतराम कीजिए, जो किताब पढ़े उसका एहतराम करें, जिस इदारे में पढ़े उसका एहतराम करें, उससे मोहब्बत करें, तब इल्म हासिल होगा। बड़ों का एहतराम लाजिम है, इसके दर्जे बढ़ते चले जाएंगे, जिसका दर्जा जितना बड़ा उतना ज्यादा एहतराम। औलिया का एहतराम, हजरत बहलूल दाना बैठे हैं, एक ताजिर गुजर रहा, उसने देखा हजरत बैठे, सवारी से नहीं गुजरा, उतर गया, सवारी पीछे की उतर गया, खिजबत में पहुंच गया, सलाम किया, जवाब दे दिया, हुजूर मैं जा रहा था तिजारत के लिए, मुझे बताएं कि मैं कौन सा ऐसा माल खरीदूं कि मुझे फायदा हो जाए, नफ़े कसीर हासिल। गौर से देखा, काला कपड़ा खरीद लो। काला कपड़ा? हाँ काला कपड़ा खरीद लो। चला गया, काला कपड़ा खरीद लिया, थान के थान खरीद लिया। दो दिन हो गए कोई आए ही नहीं। अब दिल में सोचा कि हजरत ने तो कह दिया काला कपड़ा खरीद लो, यहां तो कोई भी नहीं आया ग्राहक, और अगर ये माल नहीं बिका तो जाहिर है वो पैसा तो जाया हो जाएगा। अचानक शहर में किसी बड़े आदमी का इंतकाल हो गया, तमाम शहर वालों ने उसके सोग में कहा कि हम काले कपड़े पहनेंगे। अब सब गए किसके पास है, इसी के पास था, सारा कपड़ा बिक गया, वो मांगे दामों में बिक गया, बड़ा खुश हुआ, वली की जबान से निकल गया। लेकिन इंसान के पास जब पैसा आता है तो फिर गुरूर तकब्बुर पैदा हो जाता है, यही सबसे बड़ी खराबी, शैतान उसके अंदर नखवत गुरूर पैदा करता है, तुम तो अब हो गए। हालांकि होना ये चाहिए कि जब अल्लाह ताला कोई नेमत दे, पैसा दे वाफर मिकदार में, तो और उसके सामने झुक जाए, मौला मैं इस काबिल नहीं था, तूने दिया तो तेरा करम। यहां उल्टी बात होती है, वो कहते हाँ हम हैं ये हमने कमाया, ये नहीं पता था कि तो वली की दुआ से था, अदब किया था। अब उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर गुजरे, हजरत फिर बैठे उसी जगह, लेकिन अब सूरत हाल अलग थी, पहले आजी इनके सारी थी, अब गुरूर तकबर, अब सवारी से नहीं उतरे, हजरत का अदब नहीं कि सवारी से उतर जाए, सवारी पे से गुजरे। हजरत जा रहा हूं मैं क्या चीज खरीदूं कि मुझे नफा कसीर हो। हजरत ने एक नजर देखा, पहले ही समझ गए होंगे अब गुरूर आ गया, कहा खरबूजे खरीद लो। खरबूजे? हाँ खरबूजे, ठीक, जाके सारे शहर के खरबूजे खरीद लो। तीन दिन तक कोई ग्राहक नहीं आया, सारे गल सड़के खत्म, पैसा खत्म। अब बड़े परेशान, ये क्या हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो फिर हजरत की खिदमत में, हजरत आपने तो कहा था कि खरबूजे खरीद लो और उससे इतना नफा कसीर मिलेगा, नफा क्या हुआ, तो नुकसान हो गया। फरमाया ये मेरे कहने से नहीं हुआ, ये तेरी नियत की वजह से हुआ। पहले जब तू आया था बाअदब होकर आया था अकीदत के साथ, अब आया तो गुरूर तकब्बुर के साथ। तो बाअदब होकर आया, नफे कसीर मिल गया, गुरूर के साथ आया, नुकसान हो गया। तो ये मेरे कहने से थोड़ी हुआ, ये तो तेरी नियत की वजह है और तेरे अदब करने न करने की वजह है। पता चला जो जितना अदब करेगा उतना ही ऊपर की तरफ जाएगा, और जो नहीं करेगा उसी वक्त पटक दिया जाएगा। इसलिए कहते हैं बुजुर्गों का अदब करो। अच्छा बहुत से लोग मानते नहीं, नहीं जी नहीं, हम इनको नहीं मानते, ये बुजुर्ग हैं, हम मानते नहीं कि ये अल्लाह के वली हैं। बहुत से लोग नहीं मानते, इख्तलाफ होता है। ना मानना अलग बात है, ना मानो, लेकिन गुस्ताख मत बनो, गुस्ताखी ना करो, बेअदबी ना करो। ना मानना अलग बात है, भाई आप कहते नहीं मानते, चलो बात अलग है, आपका जहन उस बुजुर्ग से नहीं मिलता, उस शख्सियत से नहीं मिलता। आपने कह दिया मैं इनको नहीं मानता, मैं वली नहीं मानता, मैं नहीं मानता, जो भी कुछ, लेकिन गुस्ताखी करना, बेअदबी करना, उससे फिर माल जाने का भी खतरा है, बल्कि ईमान जाने का भी खतरा। इसलिए अल्लाह वालों से डरो, उनकी शान में गुस्ताखी करने से अपने आप को बचाओ। जितना अदब करोगे, एहतराम करोगे, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला नेमतें अता फरमाएं, रहमतें बरकतें अता फरमाए। अच्छा, एहतराम औलिया अल्लाह का भी है और एहतराम कलामुल्लाह का भी। कुरान का अदब करो, एहतराम करो। ला यमस्सहु इल्लल मुतहरून, कुरान के ऊपर आयत लिखी होती, मत छुओ इसको बगैर पाकी के, जब तक पाकी हासिल ना हो जाए हाथ ना लगाओ। यानी बेवजू कुरान को हाथ लगाना दुरुस्त नहीं है, वजू करके अदब एहतराम के साथ। और जब आप पढ़ रहे हैं तो फिर गुफ्तगू ना करें, और अगर गुफ्तगू करें तो बंद कर दो, कुरान खोल के बैठे गुफ्तगू हो रही है, ये कुरान का अदब नहीं है। कुरान का अदब यह है कि जब कुरान करीम आप खोल कर बैठे तो नजर उसी पर हो, फिर नजर कहीं और ना हो, और अगर नजर कहीं और हो तो बंद कर दो। तो कुरान खोलकर फिर दुनियावी गुफ्तगू करना, ये कुरान की बेअदबी है। उसको चूम कर आंखों से लगाकर फिर उसको रखो। आज आप देखते हैं अरब में आप चले जाएं, टांगे फैली हुई हैं, कुरान रखा हो, ख्याल ही नहीं। जहां कुरान रखा है वहीं जूतियां भी रख दी, अस्तग़फिर। ये सब क्या है, ये सब बेअदबी है, ये तरबियत ना होने का नतीजा। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला ने बगदाद में हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला के मजार मुबारक के करीब, यानी उसी इलाके में इनका मजार मुबारक, और भी कई बुजुर्गान दीन के मजार हैं, उनका वाकया ये था कि अपनी जिंदगी में शराब कसरत से पीते थे। मशहूर था कि ये जो है शख्स, ये बहुत ज्यादा शराब पीता। एक दिन उसी शराब के नशे में झूमते झामते चले जा रहे, अचानक एक कागज के टुकड़े पर नजर पड़ी, गली से जो गुजर रहे रास्ते से, कागज का टुकड़ा, और उस पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही नजर पड़ी, उसी कैफियत में, यानी शराब के नशे में, दिल में ख्याल आया कि ये तो मेरे रब का नाम है। उसको उठाया, चूमा, आंखों से लगाया और उसको एक जगह रख दिया एहतराम के साथ, और फिर उसी नशे में झूमते झामते चले गए शराब खान। जिस तरह कैफियत थी, रोजाना पीते थे, उसी तरह। अल्लाह तबारक व ताला नुक्ता नवाज है, एक जरा सी अदा पर बख्श देता, कैसे ही गुनाहगार क्यों ना हो। उसको कोई एक अदा पसंद आ गई, अगले पिछले गुना माफ कर दिए जाओ, मगफिरत हो गई। अल्लाह ताला को यह अदा पसंद आ गई। उस जमाने के एक बुजुर्ग, उनको हुक्म हुआ कि जाओ हमारा एक बंदा शराब खाने में है, उसका नाम बिशर है, उसे जाकर हमारा सलाम कह दो। अल्लाह तबारक व तआला सलाम भेज रहा किसको, जो शराब के नशे में। अरे कोई मस्जिद में होता तो एक बात समझ में आती कि जाओ हमारा बंदा मस्जिद में बैठा है, नफिल पढ़ रहा है, जाओ वो कुरान की तिलावत कर रहा है, जाओ वो चिल्ला कशी कर रहा है। नहीं, हमारा बंदा शराब खाने में बैठा है, नशे में है, उसको हमारा सलाम कह दो। और इस वजह से कि उसने हमारे कलाम की ताजीम की, इज्जत की, एहतराम किया, चूमके रख दिया ना, अल्लाह को अदा पसंद आ गया। अब वो चले, कौन है बिशर, कहां पर है, तलाश करते करते पहुंच गए, देखा कि वहां भी वो नशे में। कहलवाया कि भाई उनको भेज दो, अपना नाम बताया कि उनसे कहो कि फला बुजुर्ग आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। बिशर हाफी शराब के नशे में धुत थे, उनके किसी ने जाकर कह दिया, उसी कैफियत में उठे। जब आए उन्होंने कहा रब ने तुम्हें सलाम कहा है। मुझे सलाम कहा, मैं तो गुनाहगार बनता, मैं तो शराब में हमेशा, कभी मैंने कोई उसकी इबादत नहीं की, मैंने कौन सा ऐसा अमल किया। कहा तुम रास्ते से गुजर रहे थे, इस तरह तुम्हें एक कागज का टुकड़ा नजर आया, तुमने चूम कर उसको रख दिया, एहतराम किया, अल्लाह को अदा पसंद आ गई, रब ने तुम्हें सलाम भेजा। बस दिल की कैफियत बदल गई, नदामत शर्मिंदगी आंसू बनकर आंखों से जाहिर हुई, लरज गए, कांप गए, मैं गुनाहगार बंदा, मैं सियाकार बंदा, कभी रब को याद नहीं किया, अरे सिर्फ उसके नाम का एहतराम किया और वो मुझे सलाम भेज रहा है। उसी वक्त सच्चे दिल से तौबा की और सच्चे पक्के मुसलमान बन। नशा था फिर भी नशे में रहे, लेकिन अब नशे में फर्क था। पहला नशा शराब का था, अब खुदा की मोहब्बत का था, अब इस्लाम का था, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी का नशा था। एक सलाम ने बिशर हाफी की कैफियत को बदल दिया, और हमेशा नंगे पैर रहते थे, सारी जिंदगी कभी जूती नहीं पहनी। हाफी इसीलिए उनके नाम के साथ लगा और उनके नाम का जुज बन गया बिशर हाफी, नंगे पैर रहने वाला। लोगों ने कहा हजरत आप जूती क्यों नहीं पहनते, कहा इसलिए नहीं पहनता कि जब मेरे रब का सलाम मुझ पर आया था तो उस वक्त मैं इसी हालत में था, मेरे पैर में जूती नहीं थी, जब रब ने मुझे सलाम भेजा था मैं कभी जूती नहीं पहनूंगा। और इस वजह से जिस रास्ते से आप गुजर कर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते थे, उस रास्ते में कोई जानवर गिलाजत लीद वगैरह नहीं करते थे कि बिशर हाफी यहां से गुजरेंगे, और यह बात मशहूर थी, लोग इसको नोट करते थे, इस रास्ते से बिशर हाफी गुजरते हैं, कभी किसी जानवर ने लीद नहीं की। भाई जानवर है कहीं भी कर दे, जानवर भी जानते हैं अल्लाह का बंदा गुजर रहा, अल्लाह का महबूब बंदा गुजर रहा। एक दिन किसी ने देखा कि किसी जानवर ने उसी रास्ते में लीद कर दी, उसने कहा लोगों सुनो बिशर हाफी का इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता कि इंतकाल हो गया, किसी ने तुम्हें खबर दी। कहा नहीं, फिर कैसे कह रहे होगा। इसीलिए कह रहा हूं कि इस रास्ते से वो गुजरते थे, जानवर लीद नहीं करते थे, आज यहां पर लीद की हुई है, इसका मतलब है बिशर हाफी का इंतकाल हो गया, और खबर मिली, वाकई ये खबर सही थी, जानवरों को पता चल गया जो गुजरने वाला था वो चला गया, वो दुनिया से ही गुजर गया। यह है अल्लाह वालों की शान। अब इससे कई बातें हमें पता चली। पहली चीज कलामुल्लाह का अदब, सिर्फ बिस्मिल्लाह का जो अदब करे उसकी दुनिया बदल जाए, जो कलामुल्लाह का अदब करे उसकी क्या कैफियत हो। इसीलिए कहते कुरान का अदब करो। और अदब सिर्फ यही नहीं कि उसको उठाकर रख दो, उसको पढ़ो भी, उसको समझो भी, उस पर अमल भी करो। हर चीज के लिए उठाकर नहीं लिया, जरा सी बात लाओ कुरान लाओ हाथ रखो बताओ। एक लोगों ने एक आम चीज बना दी, किसी से जरा सी लड़ाई लाओ कुरान लाओ भी हाथ रख के बताओ सही है या नहीं। कुरान को बीच में नहीं लाओ कभी, मामूली चीज नहीं है। अल्लाह फरमाता है लव अनजलना हाजल कुरान अला जबली लरईतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर हम अपना ये कलाम पहाड़ों पर नाजिल कर देते तो तुम देखते कि इसकी हैबत और जलाल से पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। ऐसे हैबत और जलाल वाला कलाम, ये तो उसका करम है कि जिसकी हैबत और जलाल से पहाड़ रेजा रेजा हो जाए वो इंसान के सीने में महफूज हो जाए, ये उसी का करम है जिसका कलाम है। वरना सीने फट जाए, शक हो जाए, ऐसा कलाम। वइज़ा समियु मा उन्ज़िला इला रसूल तरा आयुनहुम तफीदु मिन दमअ, कुरान कहता है कि और जब अहले दिल इस कलाम को सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते, कुरान की हैबत उनके दिल पर तारी हो जाती। तो ऐसा कलाम और हम उसको लिए फिर रहे, जरा सी बातों पे हाथ रख दो, कसम खा लो, हलफ उठा लो, ये कर लो, नहीं। अदब एहतराम के साथ उसको रखिए। जब तिलावत कीजिए बावजू होकर कीजिए, तिलावत के दौरान दुनियावी बात ना कीजिए, और जब तिलावत कर ले तो फिर हाथ उठाकर अपने रब से दुआ कीजिए, मांगिए। ये तिलावत मामूली चीज नहीं है, इंसान तिलावत करता है रब से बातें करता, रब से हम कलाम होता है। अरे ये रब का कलाम है और वही कलाम आप पढ़ रही, कितना रब का करम है कि उसका कलाम हम पढ़ रहे हैं। अकुर्ब कयामत में ये उठा लिया जाएगा, कुरान के हरूफ गायब हो जाएंगे हदीस शरीफ के मुताबिक। तो ये अल्लाह का कलाम हमारे पास मौजूद है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका बहुत बड़ा करम है। तो जो लोग रोजाना ये पढ़ते हैं इसकी तासीर दिल में पैदा होती है। इंसान जबान से पढ़ता है ना, नूर दिल में पैदा होता है। इसलिए चाहिए कि रोजाना फजर के बाद एक सफा आप अपना मामूल बना लें, एक सफा, ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है, जितने आपके पास टाइम हो, लेकिन कम से कम एक सफा पढ़ें और उसके बाद बंद कर दें। एक सफा पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगता। आपने फजर की नमाज पढ़ी, मस्जिद में हो घर में हो, एक सफा पढ़ा, बंद कर दिया, दुआ कर ली, निशानी लगा दी, दूसरे दिन फिर दूसरा सफा, तीसरे दिन तीसरा सफा, इसी तरह होते होते पूरा कलाम मुकम्मल हो जाए, पता भी नहीं चलेगा। हम ये नहीं कहते कि रोजाना आप सूरह बकरा पढ़ें ढाई से पारे की, रोजाना एक पारा पढ़ें, रोजाना आधा पारा पढ़ें, पाओ पढ़े, नहीं। एक सफा भी अगर आप अपना मामूल बना लें तो देख लें इससे भी कितनी रहमतें बरकतें नाजिल हो। तो कुरान का अदब लाजिम है। तो बात यहां से चली कि हर छोटे पर लाजिम है कि अपने बड़े का अदब करें, हर शागिर्द पर लाजिम है कि उस्ताद का अदब करें, हर मुरीद पर लाजिम है कि पीर का अदब करें, और हर उम्मती पर लाजिम है कि नबी पाक अलैहि सलातो सलाम का अदब करें। अदब सिर्फ यही नहीं कि आप किसी को देखकर खड़े हो जाएं, उसका हुक्म मानना यह भी अदब है। महफिल में किसी के लिए जगह खाली कर देना यह भी उसका अदब है, किसी के लिए अपना खाना छोड़ देना यह भी उसका अदब है। या तो कहते ना नहीं, हम ही सारा खा जाएं, दूसरे को मिले ही नहीं, हम बैठ जाएं तो हम ना उठे, दूसरे को जगह मिले ना मिले। अगर कोई मुसलमान भाई आए आप उसके लिए जगह खाली कर दें, यह भी अदब। ये सारी आदाबें जिंदगी में है। वालदैन अगर खड़े हो तो औलाद को चाहिए कि वो अगर बैठी है तो उनके देखकर खड़े हो जाए, उनके लिए अपनी जगह खाली कर दे। यहां तो आराम से बैठे रहते हैं कि इनकी मर्जी है, जहां चाहे बैठ जाए। हर चीज में अदब है, हर चीज में एहतराम। जो जितना अदब करेगा उतने ही इज्जत और वकार हासिल करेगा। हजरत मखदूम सबनानी उस मकाम की तरफ लेटते वक्त पैर नहीं करते थे जहां उनके पीर का हुजरा था। मेरा पीर यहां पर रहता है, ये उनका हुजरा है, मैं इधर पैर नहीं करूं, ये है अदब। अब बैतुल्लाह की तरफ हम पैर क्यों नहीं करते? अदब है। इसी तरह हुक्म यह है कि बैतुल खला में किबले की तरफ न मुंह हो न पीठ हो, क्यों? अदब है। हालांकि इतनी दूर है, लाखों मील दूर है ना, और कितने हिजाबात हैं रास्ते में, नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अदब है। तो जब बैतुल्लाह का इतना अदब है, तो जिसकी वजह से बैतुल्लाह है उसका कितना अदब होगा? जिसने बैतुल्लाह को चार चांद लगाए उसका कितना अदब हो? तो ये सारी चीजें जो हैं ये आदाब में हैं। इसी तरह नमाज के आदाब हैं। अब बहुत से लोग नंगे सर नमाज पढ़ लेते, और अगर उनको कहो कि भाई नंगे सर आप नमाज पढ़ रहे, तो कहते हैं क्यों, क्या नंगे सर नमाज नहीं होती? कि नमाज तो आप कमीज उतार दें फिर भी हो जाएगी, आप बनियान उतार दें फिर भी नमाज हो जाएगी, खाली एक नेकर पहन के बैठ जाइए। एक चीज है होना और एक चीज है आदाब के साथ होना, सुन्नत के मुताबिक होना। क्यों जी, क्या बगैर टोपी के नमाज नहीं होती? क्या बताओ, नबी पाक अलैहिस्सलाम का अमल कभी ऐसा रहा नहीं? टोपी के साथ नमाज पढ़ना ये नमाज के आदाब में से है, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है। तो जैसा सरकार ने किया वैसा करो, नमाज को पढ़ो उसके आदाब के साथ पढ़ो, उसके पूरे अरकान के साथ पढ़ो, तब जाके सही मानों में नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। ये सारे आदाब में से इस्लाम हमें ये आदाब सिखा रहा। किसी बड़े के सामने जाओ सर ठाप के जाओ। अब आप देखते हैं कि अंग्रेज किसी के सामने आते हैं, इज्जत के लिए फौरन हेड उतार देगा, उल्टा ही है हमारे हिसाब, जो हम करेंगे उल्टा ही करेंगे। हम किसी बड़े को देखेंगे टोपी ओढ़ लेंगे, और ये हेड ओढ़े भी होंगे फौरन उतार लेंगे नीचे। यानी उनका एहतराम ये है उनकी नजर में, किसी बड़े का एहतराम ये कि अपना सर नंगा कर दो, हेड उतार दो फौरन। और हमारे नबी ने एहतराम सिखाया कि सर ढाप लो, टोपी ओढ़ कर रखो, अदब के साथ रहो। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये सारी चीजें जो है ये आदाब जिंदगी में है। और ये तो हमने मुख्तसर बयान किया, खाने पीने के आदाब हैं, चलने फिरने के आदाब हैं, उठने बैठने के आदाब हैं, सोने जागने के आदाब हैं। फरमाया पानी पियो तो तीन सांस में पियो, ठहर ठहर कर पियो, गिलास मुंह से लगाया तो जब तक खत्म नहीं किया तो हटाए ही नहीं। जानवर को देखा ना, जब मुंह डालता है जानवर पानी पीने के लिए, तो ये थोड़ी करता कि डाला फिर उठाया फिर डाला फिर उठाया, वो एक दफा बकरी मुंह डालेगी या बकरा कोई भी जानवर पूरा वो खत्म करके तभी हटाएगी। और अगर किसी इंसान ने ऐसे ही किया तो क्या फर्क हुआ दोनों में, एक जैसे हो गए, तो फिर इंसान और जानवर में क्या फर्क हुआ? इंसान पीता है इत्मीनान के साथ, बिस्मिल्लाह पढ़ी एक घूट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सुकून के साथ, सुन्नत तरीके के साथ, और उससे सेहत भी है, उसी में अमन भी है, उसी में आफियत भी है। और एक सांस में पिएगा तो मेडिकली तौर पर भी उसके लिए नुकसानदेह। ये सारी चीजें, इसी तरह खड़े होकर खाना, सरकार ने फरमाया बैठ कर खाओ। जितनी चीजें हैं आप देख ले, वक्त मुख्तसर है इसलिए मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, ये सारे आदाब जिंदगी हैं। तो इन तमाम चीजों को हमें खुद भी अपने ऊपर लागू करना चाहिए, अपने अहलो अयाल को, अपने बच्चों को, खुसूसन छोटे बच्चों को इससे आगाह करना चाहिए, बताना चाहिए, और हमें पहले खुद करना चाहिए ताकि बच्चे देखें तो वो भी करें। बच्चे जैसे आपको देखेंगे वैसे करेंगे, वो कहेंगे अब्बा तू इस तरह पीते हैं तो फिर हम भी पी लें, इसमें क्या हर्ज है। तो आप पहले खुद सही तरह पानी पिए, सही तरह खाएं, सही तरह सोएं, तरीका आदाब जिंदगी, तो औलाद भी उसी तरह फिर रहेगी। तो आज की इस मुख्तसर से नशिस्त में हमने ये तमाम चीजें बयान की, उस्ताद का अदब, पीर का अदब, वालदैन का अदब, औलिया का अदब, अंबिया का अदब, और सबसे बढ़कर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब। जितना अदब करेंगे, जितना एहतराम करेंगे, उसी में फलाह है, उसी में निजात है, उसी में कामयाबी है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما. اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.